नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 13,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत सामूहिक जिम्मेदारी है। देशवासियों से सुबह 10 बजे 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करने को कहा ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो। भारत ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में गैर स्थानीय चरमपंथी तत्वों द्वारा उसके राजनयिक को गुरूद्वारे में प्रवेश करने से रोकने की घटना की निंदा की। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। तमिलनाडु के कुन्नूर में बस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, 42 घायल। और हांगचू एशियाई खेलों में भारत आज बैडमिंटन में स्वर्ण पदक के लिए चीन से खेलेगा। 7वें दिन भारत ने 10 स्वर्ण सहित 38 पदक जीते और तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद तेलंगाना के महबूब नगर पहुंच रहे हैं। श्री मोदी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क और रेल ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बिजली से संबंधित हैं। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद हैदराबाद से होकर महबूब नगर जाएंगे। वे जकलेर कृष्णा रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 505 करोड़ की लागत से मुनीरबाद महबूब नगर रेलखंड पर बनाया गया है। इससे हैदराबाद और गोवा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। श्री मोदी कुचीगुड़ा रायचूर डेमू रेल सेवा और 4 लेन वाले सूर्यपेट खम्मम राजमार्ग का उद्घाटन करेंगे, जिसे 2,457 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री 6,400 करोड़ रूपये लागत वाले कुछ अन्य सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे हासन चरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे एचपीसीएल ने 2661 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। श्री मोदी आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम और हैदराबाद के बीच बहु उत्पाद पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और जेट ईंधन की ढुलाई और आपूर्ति आसान होगी। प्रधानमंत्री हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 81 करोड़ रूपये लागत वाले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन के भवनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देशभर में लोग व्यापक स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप आज सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान में 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री का 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आह्वान स्वच्छ भारत के प्रति दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक प्रयास होगा। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, रेलवे ट्रैक, जल निकायों, पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों और अन्य क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान नागरिकों के साथ मिलकर विभिन्न स्थलों पर सफाई कार्य करेंगे। सफाई स्थलों पर नागरिक अपनी तस्वीरें खींचकर इसे swachhtahisewa.com पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से इसमें भागीदारी करने और स्वच्छता अभियान के लिए समय निकालने की अपील की थी।
1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं।
गुजरात के सभी जिलों में स्वच्छता के लिए विभिन्न श्रमदान गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद की रानीप में श्रमदान में भाग लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में अपनी विधानसभा क्षेत्र घाट लोदिया में स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न जनप्रतिनिधि राज्यभर में विभिन्न स्थानों पर 1 घंटे के लिए श्रमदान गतिविधियों में भाग लेंगे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात में आज बड़ी संख्या में श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि पूरे गुजरात में स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर 30,000 से अधिक श्रमदान कार्यक्रम पंजीकृत किए गए हैं। श्रमदान कार्यक्रमों में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त और शून्य अपशिष्ट पहल को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अब तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,25,000 गतिविधियां पूरी हो चुकी है, जिनमें लगभग 2.5 करोड़ ग्रामीण लोगों ने हिस्सा लिया है। इस अभियान के तहत राज्य के करीब 11,000 ब्लैक स्पॉट पर मेगा सफाई अभियान चलाया गया है। अपर्णा कुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब के 25% से अधिक गांव अब खुले शौच से मुक्त हो गए हैं। अब तक राज्य के 3,028 गांवों को ODF प्लस का दर्जा दिया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्कॉटलैंड में ग्लासगो में बाहरी चरमपंथी तत्वों द्वारा एक गुरुद्वारे में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उनके कार्यक्रम को जानबूझकर बाधित करने की घटना की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने वक्तव्य जारी कर इस घटना को अपमानजनक करार दिया है। तमिलनाडु में कल कुन्नूर में एक पर्यटक बस के खाई में गिर जाने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 42 अन्य घायल हो गए। बस में तेनकासी के 60 पर्यटक सवार थे। दुर्घटना के समय यह बस ऊटी से लौट रही थी। घायलों को ऊटी और कोयम्बतूर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सेना प्रशिक्षण कमान का आज 33वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SS महाल ने कमान से जुड़े सभी कर्मियों और उनके परिवारजनों को बधाई दी है। सेना प्रशिक्षण कमान की स्थापना 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश की महू में की गई थी। वर्तमान में यह संस्थान शिमला में स्थित है। इस केन्द्र में युद्ध और शांतिकाल दोनों से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इनमें अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल महाल ने बताया कि प्रशिक्षण में रूस यूक्रेन युद्ध के अनुभवों को भी शामिल किया जा रहा है।
आर्ट्रैक ने रशिया यूक्रेन वॉर के लेसन्स का डिटेल्ड विश्लेषण किया है। हमने देखा कि शहर और कस्बों की लड़ाई खुले मैदान की लड़ाई से बिल्कुल अलग है। इसकी संयुक्त ट्रेनिंग के लिए हमने अर्बन वॉरफेयर ट्रेनिंग नोड एक बना रहे हैं। यह एक आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी जहां पर सभी मिलकर युद्ध अभ्यास कर सकें।
भारत और सिंगापुर के बीच 30वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हो गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक कावरत्ती, ASW कार्वेट, पनडुब्बी सिंधुकेसी और एक लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I ने भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2,000 रूपये के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में बताया कि नोट बदलने की समय सीमा कल समाप्त हो रही थी और एक समीक्षा के आधार पर 2,000 रूपये के नोट जमा करने या बदलने की वर्तमान व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भाषा, संस्कृति और सभ्यता के बीच गहरा संबंध है। मालदीव में विपक्षी PPM-PNC गठबंधन के डॉ मोहम्मद मोइजू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तात्कालिक परिणामों के अनुसार डॉ मोइजू को 53% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। मालदीव के कानून के अनुसार उम्मीदवार को विजयी होने के लिए कम से कम 50% मत प्राप्त होना आवश्यक है।
मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव के अनंतिम परिणामों से पता चला है कि डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने लोकप्रिय वोट जीता। अपने एक्स पोस्ट में निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोइजू ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें वोट दिया और अब्दुल्ला यामीन की रिहाई की मांग की। श्री सोलेह ने डॉक्टर मोइजू को बधाई देते हुए मालदीव के लोगों को अपना आभार व्यक्त किया। सत्ता में बदलाव के लिए मजबूत सत्ता विरोधी भावना और श्री सोलेह की नीतियों के विरुद्ध अभियान माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी।
मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और दक्षिणी और उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। चीन के हांगचो में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में थाईलैंड की रक्सा चुथामत के सामने रिंग में उतरेंगी। वहीं गोल्फ में अदिति अशोक वर्तमान में महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्वर्ण जीतने के लिए शीर्ष स्थान पर हैं और महिला टीम भी भारत पदक की दौड़ में है। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने दूसरे मैच में आज दक्षिण कोरिया के सामने उतर रही है। अब एशियाई खेलों की अन्य खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
चीन में चल रहे हांगचो एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम सफर जारी है। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 38 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। इन खेलों के सातवें दिन भारत ने कल 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। भारत को रोहन बोपन्ना और रुद्रजा भोसले ने टेनिस में मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड जिताया। इस जोड़ी ने चीनी ताइपे के खिलाफ तीसरा सेट टाई ब्रेकर में जीतने के बाद स्वर्ण जीता। भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशियाई खेलों में स्क्वाश में भारत को 10वां स्वर्ण पदक दिलाया। सरबजोत सिंह और दिव्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन फाइनल में चीन से हारने के बाद उसे रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा। पुरुषों के 10,000 मीटर में कार्तिक कुमार ने रजत और गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। आज के मुकाबलों की हम बात करें तो तेजेंद्र पाल सिंह तूर और साहिब सिंह पुरुष गुलाफेंक के फाइनल में होंगे। जैस्मिन एल्डिन और शिवशंकर मुरली पुरुषों के लंबी कूद के फाइनल में भाग लेंगे। अविनाश साबले पुरुषों के 3,000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में हिस्सा ले रहे हैं। सीमा पुनिया महिला चक्का फेंक के फाइनल में होंगे। हरमिलन बैंस और दीक्षा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल और जिनसन जॉनसन तथा अजय रोज पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में अपना भाग्य आजमाएंगे। आज महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में ज्योति याराजी और नित्या रामराज भी हिस्सा ले रहे हैं। तीरंदाजी में आज कई भारतीय एथलीट शामिल होंगे। तुषार शेल के अतानुदास, मृणाल चौहान और धीरज बोमदेव रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन राउंड में निशाने लगाएंगे। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर, अवनीत कौर और अदिति स्वामी कंपाउंड महिला व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन दौड़ में भाग लेंगे। इससे पहले पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में कल कोरिया को 3-2 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। फाइनल में अब भारत का मुकाबला चीन से होगा। फिलहाल एशियाई खेल खबरों में इतना ही।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह की शुरुआत लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां बनी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, आकांक्षी जिलों ने बदला 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी होगा सफल। पत्र लिखता है 329 जिलों में है ये 500 आकांक्षी ब्लॉक, 100 करोड़ का है बजट। आज से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर ज्यादा जीएसटी से लेकर डेबिट क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चुनने की सुविधा से जुड़े बदलाव को दैनिक जागरण ने विस्तार से दिया है। पत्र लिखता है, आज से मोबाइल नंबर की तरह बदला जा सकेगा क्रेडिट डेबिट और प्रीपेड कार्ड का नेटवर्क। साथ ही विदेश यात्रा में 7 लाख से अधिक खर्च पर 20% टीसीएस देना होगा। मॉनसून के समाप्त होने पर जनसत्ता ने सुर्खी दी है, अलविदा मॉनसून, अब अगले साल बरसात। अक्टूबर दिसंबर की अवधि में उत्तर पश्चिम भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, मौसम विभाग ने किया मॉनसून की विदाई का ऐलान, 4 महीने के इस मौसम में बारिश रही सामान्य। हिन्दुस्तान इस खबर पर लिखता है, सामान्य बारिश लेकिन मॉनसून में देश का 18% हिस्सा सूखा रहा। देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के 9 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकलने को हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, आदित्य L1 यान पृथ्वी की कक्षा से सफलतापूर्वक बाहर निकला।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 13,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत सामूहिक जिम्मेदारी है, देशवासियों से सुबह 10 बजे 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करने को कहा ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो। भारत ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में गैर स्थानीय चरमपंथी तत्वों द्वारा उसके राजनीतिक को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोकने की घटना की निंदा की। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। तमिलनाडु के कुन्नूर में बस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, 42 घायल। और हांगचो एशियाई खेलों में भारत आज बैडमिंटन में स्वर्ण पदक के लिए चीन से खेलेगा। सातवें दिन भारत ने 10 स्वर्ण सहित 38 पदक जीते और तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।